বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। গুজশতকাল আরজ কিয়া থা কি হযরত ইব্রাহিম ইবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তদফিন মে হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কো আপ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে সবসে আগে আগে রাখা। কি আপ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি দোনো বাপ বেটোঁ পর হজরত জৈদ ইবনে হারিসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পর আর হজরত উসামা ইবনে জৈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পর ইন্তহাই শফকত কা নতিজা, বেপনাহ মহব্বত। ইসে বড়কর আর কিয়া হোগা কি আপ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মুতাবান্না মুহ বোলে সাহাবজাদে আপ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে উনকে আব আব্বা জৈদ ইবনে হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু কো আপনা বেটা বানা লিয়া থা, ও ভি ইন্তহাই ফিদা সরকারে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মহব্বত কি আর শফকত কি কদরদানি মে পুরে উতরে, হক আদা কর দিয়া। হামারে মহব্বত নামে কি তিনো জিলদে বাস জগে বার বার পড়ি গে, কতনে উলামা মশাইখ কা বয়ান হ্যাঁ কি জবসে আপনে ভেজি তো কই দিন নাগা নি হতা কি উসমে সে চন্দ খতুত সোনে সে পেলে হাম না পড়তে হো। আর সব কো ইয়ে তাজ্জুব কে দোনো ভাইয়ো সে হযরত শেখ কুদ্দুস রুহ কো কিস কদর আর কিস দরজে কি মহব্বত। মানে কহিন বয়ান মে আরজ ভি কিয়া থা কি এক মকতুবে গিরামি মে হযরত নে তাহরির ফরমায়া কি তুম জানো কি মেরে নজদীক তুম মে আর তলহা মে কোই ফরক নেই, ইয়ে মুতাবান্না বেটা বানানা। লেকিন সাআদতমন্দো মে আর আশকিয়া মে সুআদা আর আশকিয়া মে বড়া ফরক হতা হ্যায়। হযরত শেখ কুদ্দুস রুহ কা জো হুসনে জন থা ভাইজান রহমতুল্লাহ আলাইহি নে উসে পুরা কর দিখায়া আর হযরত কে হুসনে জন পর ও সচ্চে উতরে আর সবসে বড়ি গবাহ সবসে বড়ি শাহাদত আর ইসকি দলীল উনকা ইস জাহান সে আলম আখিরত কি তরফ কদম রঞ্জা হতে বক্ত আসমান ওয়ালোঁ কো সালাম। কতনা আজিব ও গরিব ওয়াকিয়া। আর ইসকে বিলকুল বরাক্স জিন্দগি মে ভি মেরি তরফ সে হযরত শেখ কুদ্দুস রুহ কো তকলিফে পৌঁছি। হযরত পীর সাহেব কি মজলিস মে ইয়ে কিতাব তিন মর্তবা বাকায়দা তালিম কে তোর পর আসর কে বাদ পড়ি গই, তিনো জিলদে তিন দফে। আর তো তনহাই মে কতনা উনহোনে পড়া হোগা আর কতনে গৌর ও খোজ সে পড়া হোগা কি মুঝে হযরত পীর সাহেব এক দফে ফরমা রহে থে কি এক চিজ ইসমে বহুত গলত আ গই, নি আনি চাহিয়ে থি। তো মে চৌঁকা, মানে পুছা ও ক্যা চিজ। ফরমানে লগে কি ইয়ে যো তুমে হযরত কি তরফ সে যো ডাঁটা গয়া হযরত কি তরফ সে তম্বিহাত ডাঁট ডপট তো ইয়ে তো তুমারি জাতি ইসলাহ কে লিয়ে থি, ইস তরহ আম করনে কে লিয়ে থোড়ে হি থি। তো মানে কাহা সবকো ফায়দা হো, কাহা কি নাই ফায়দা নেই ইসমে নুকসান হ্যায়, তুমারে তলামিজা বগেরা ইসকো পড়েঙ্গে। মানে কাহা বড়া নুকসান হতা রে, মে বার বার পড়তা রহুঙ্গা কিতাব দেখুঙ্গা শায়দ উস ওয়াক্ত হযরত কি জিন্দগি মে আপনি ইসলাহ মে নি কর সকা জিস পর হযরত নে ডাঁটা হোগা ঝিড়কা হোগা, তো শায়দ কোই ওয়াক্ত আ যায় মেরে সম্ভলনে কা আর আপনি ইসলাহ কা আর আপনি আপকো ঠিক করনে কা। তো ইয়ে হযরত শেখ কুদ্দুস রুহ কো জো মহব্বত থি তো আপনি সাআদত মন্দি সে ভাইজান নবর আল্লাহ মরকদহু নে হযরত কে হুসনে জন কো পুরা কর দিখায়া। एक मिसाली ज़िंदगी गुजार कर गए, मिसाली काम करके गए, कितनी सारी उनकी अपनी इम्तियाजी खूबियाँ जो न कहीं पढ़ी गई न सुनी गई, लेकिन एक तरफ मैं हूँ, मेरे लिए मुबारक घड़ियों में आप हज़रात दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, नफ्स व शैतान की ग़ुलामी से मुझे निजात दे कि मैं हज़रत के तमन्नाओं के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकूं। गरज ये दोनों बाप बेटे हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सबसे महबूब तरीन उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब ही था हिब्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब। तो यही महब्बत और शफ़क़त का नतीजा था कि हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और उनके साथियों की शहादत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर याद फरमाते थे। जब से वो शहीद हुए तो उस वक्त से उबना को और शुहदाए उबना को, जो उबना के मकाम पर ये हज़रात और इनके साथी शहीद हुए, उनको बराबर याद फरमाते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात से कबल रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल है और उससे पहले सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस रंजो गम के वाक़े ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को इंतहाई मजरूह किया तो लिखा है कि वकाना قد وجد عليهم وجدا شديدا, बहुत ही दिल दुखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और ये गम बुलाया नहीं जा सका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल से एक माह कबल सफ़र के इब्तदाई हफ्ते में तैयारी का हुक्म फरमाया और हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस फौज का अमीर मुकर्रर फरमाया और फौज तमाम महाजरीन और अनसार साहब कराम पर मुश्तमिल थी, बड़े बड़े साहब कराम। अशरा मुबशरा में से हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अबू उबैदा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो उस फौज में शामिल, बड़े बड़े साहब कराम महाजरीन और अनसार इसमें शामिल, मगर अमीर किसको मुकर्रर फरमाया, हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को। तो कभी ये तर्ज़ अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबे किराम ने देखा नहीं था, तो जो बड़े हज़रात थे उनके यहाँ तो उसका सबब और इल्लत और उसकी वजह और उसकी हिकमत मालूम करने की उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी, कोई बताए तो भी नाराज़ होते थे, कह रहे आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मंशा वो हमारा मंशा, जो आपकी चाहत वो हमारी चाहत, तो उन्हें तो कोई इश्काल ना हुआ, मगर जो सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मिजाज नबवी से अच्छी तरह आशना नहीं हुए थे, तो उनमें ये आपस में गुफ्तगू चली कि अरे एक लड़के को इन बड़े बड़े सहाबी किराम पर अमीर बना दिया गया, तो इतना इश्काल भी ये बड़े सहाबी किराम सुन नहीं सकते थे, जो आपस में किसी की बात हो कि भाई, तो उसको चुप चुप नहीं, खामोश नहीं, बल्कि सीधे जाकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में शिकायत अर्ज़ कर दी, या रसूल अल्लाह, ताज्जुब कि आपने हज़रत उसामा को हम सब पर अमीर मुकर्रर फरमाया और कुछ लोगों को इस पर इश्काल है, तो उनका जिनको इश्काल है और जिनको इश्काल था उनको बचाने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ये शिकायत थी ताकि वो बच जाएं, वरना खुदा ना खास्ता बहुत कुछ जा सकता है, ईमान तक जा सकता है। अमर नबवी पर इश्काल के नतीजे में तो इसलिए शिकायत जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु लेकर जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का मरज़ुल विसाल शुरू हो चुका था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन हुजरे शरीफा से बाहर तशरीफ़ लाए बीमारी की वजह से। वक़द असब रासहू बिअसाबा वअलैहि क़तीफ़ा, के कपड़ा सर पर सरदर्द की वजह से लपेटा हुआ, चादर मुबारक ओढ़ी हुई। फ़सईद अल-मिंबर फ़हमीद अल्लाह वअथना अलैह, मिंबर पर तशरीफ़ लाए, हमद सना के बाद इरशाद फरमाया कि मैंने उसामा को अमीर मुकर्रर किया, उसके बारे में तुम्हारी तरफ से ये इश्काल क्यों मुझे पहुंच रहा है? वल्लाह लइन तअंतुम फ़ी इमारतिही लक़द तअंतुम फ़ी इमारति अबी मिन क़ब्लिही व अयमुल्लाह। फिर खुदा की कसम खाकर फरमाया कि खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूँ, लक़द कान खलीक़म बिल इमारा, कि इनके अब्बा ज़ैद इब्न हारिसा ये भी इमारत के लायक थे। वइन इब्नहु बादहु लखलीकुम बिहा, ये उसामा भी इसके लायक हैं। वइन कान अबूहु लमिन अहब्बिन नास इलैया, तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा तुम में मुझे महबूब उनके अब्बा थे। वइन नहाद कदालिक, कि उनका बेटा उसामा वो भी इसी तरह मुझे महबूब। बस आगे नसीहत सिर्फ एक फरमाई, फस्तौसू बिही खैरन फइन्नहू मिन खियारिकुम। तो इस तमाम इश्कालात को छोड़ो, इनके मुतालिक अच्छी अच्छी बातें करो, खैर और भलाई की बातें करो, उनके मुतालिक भी तुम्हारे ज़ुबान से अच्छे कलिमात निकलने चाहिए कि तुम में सबसे अच्छे बेहतरीन जो लोग हैं उनमें से ये एक उसामा भी है। फ़इन्नहु मिन खियारिकुम, इतना फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे, हुजरे शरीफा में तशरीफ़ ले गए और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से तब तो कहना चाहिए चंद घंटों पहले, 3 दिन रह जाएं तो कहते हैं कि 72 घंटे पहले। चुनाचे जैसे ही ये कलिमात मस्जिद में सहाबी किराम ने सुने और वो तैयारी करके हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अपने अमीर के पास जा पहुँचे कि जैसा हज़रत अमीर का हुक्म जब चलना हो हम हाज़िर हैं। वखरजू माहू इला जुरुफ, जहाँ अभी किंग फहद हॉस्पिटल है मदीना तैयबा में तबुक रोड पर, बिल्कुल उसके सामने का जो इलाका है, बीच में सड़क उसके बिलमुकाबिल इलाका ये जुरुफ, तो वहाँ हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सब इकट्ठे हो गए। तो ये हज़रत इब्राहीम इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का ज़िक्र खैर था कि हर शख्स को मौत आनी है, और अब तो रोज़ के वाक़यात और अमवात की इतनी कसरत के हम रोज़ सुनते हैं कि फलां शहर में इतने हजरात का जनाजा है, फलां जगह फलां का इंतकाल हो गया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اسی طرح اسی شاعر نے فرمایا، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے۔ ہم دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ سوچتے ہیں اپنے دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، کسی چیز سے ہم سبق نہیں لیتے۔ ایک شاعر ہیں جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم کے اظہار کے لیے کہ میرا مجھے کتنا غم ہے پہاڑ کو خطاب فرمایا ہے کہ یہ پہاڑ، میرا یہ غم تجھ پر ڈال دیا جائے تو تو بھی صفوف پاؤڈر اور منجن بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو یہ شاعر عربی میں کہتا ہے آسمان کو خطاب کرتے ہوئے، بِرَبِّكَ أَيُّهَا الْفَلَكُ الْمَدَارُ قَصْدٌ ذَا الْمَصِيرُ أَمِ اِضْطِرَارُ، کہ اے گردش کرنے والے آسمان، تجھے میں تیرے رب کی قسم دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ جو تو گول 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 گھوم رہا ہے، تو یہ خوشی سے تیرا چلنا ہے، جان بوجھ کر تو یہ رقص کر رہا ہے یا مجبوراً کر رہا ہے؟ مدارک قل لنا فی ای شیء ففی افہامنا منک ابتہار، یہ شاعر ہیں ابو علی بغدادی، بہت پرانے، پانچویں ہجری کے شعرا میں سے، کہ تیرے گھومنے کی یہ جگہ دیکھ کر ہم حیران ہیں، تو بتا کس چیز کی وجہ سے تو چکر 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 کاٹ رہا ہے، جیسے کعبے کے چاروں طرف ملینوں اربوں انسانوں نے طواف کیا کیا کیا، تو کوئی دیکھ کر سوچتا ہوگا کیوں یہ گھومتے ہوں گے۔ تو مدارک قل لنا فی ای شیء ففی افہامنا منک ابتہار، تیرے اس طواف سے ہماری عقلیں حیران ہیں۔ وفیک نر الفضاء وهل فی فضاء سوا هذا الفضاء به تدار، کہ ہم زمین اور آسمان کے درمیان خالی جگہ ہمیں نظر آتی ہے، تو اس کے سوا بھی کوئی اور اتنی کھلی جگہ، اتنا وسیع میدان خالی مالک نے بنایا ہے، رکھا ہے؟ تو جس طرح یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، ہمارے مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو کتنا سوچتے ہوں گے یہ موت کو، پھر آگے جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے۔ یہ نمونے سب دیکھ کر اس میں غور کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، وہ یہ شاعر آسمان سے پوچھتے ہیں کہ تو کیوں گول گول گھوم رہا ہے؟ اسی طرح ایک شاعر سوچتے ہوئے، سارے نظام الہی کو، سب کو خطاب کر کے وہ پوچھتا ہے، کہتا ہے، اپنا عقیدہ بتاتا ہے، سکنتک یا دار الفنا مصدقا بانی الی دار البقاء اصیر، کہ تو ہماری والدہ صاحبہ کبھی नाराज़ होती थी, दुनिया दुनिया से, तो फरमाती थी कि ये दुनिया, ये गंदी नापाक। और वाले साहब की तो गया तस्बीह थी, जब कभी एक लंबा सांस लेते फरमाया, ओ दुनिया फना। तो इस तरह वो शायर कहता है उसको, दार अलफना सकंतु का या दार अलफना ई मुसद्दिकन बेअन्नी इला दार अलबका असीरू, कि मैं फ़ानी दुनिया में मैं रह रहा हूँ लेकिन मेरा अकीदा है, मैं इसकी तस्दीक करके इसमें रहता हूँ कि ये मेरा यहाँ क़याम आर्जी है, ये है दारुल फना और दूसरा आने वाला है दारुल बका। इसके लिए बका नहीं, ये फ़ानी है, फना होगा, ख़त्म होगा, इस पर क़यामत आएगी एक सूर से, एक लख्त सारा निज़ाम ख़त्म होकर रह जाएगा। जो आलम हमेशा रहने वाला है वो दारुल बका, उस आलम की तरफ मुझे जाना है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई कि हर किसी के मरने पर पढ़ो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, उस दारुल बका की तरफ हम सबको लौट कर जाना है। तो और ये शेर खुद शायर को इतने पसंद कि उन्होंने मरते वक्त वसीयत फरमाई, मेरी कब्र पर इसको कंधा कर दिया जाए, लिखवा दिया जाए। وأعظم ما في الأمر إني صائر إلى عاد في الحكم ليس يجور، کہ سب سے عظیم تر واقعہ جو ہونے والا ہے وہ یہ کہ میں اس دار الفنا سے جاؤں گا تو اس کے بنانے والے حاکم حق تعالی شانہ کے حضور مجھے حاضر ہونا ہے، اور انصاف وہ کرے گا میرے اعمال کو دیکھ کر۔ فیا لیت شعری کیف القاہ عندہا وزادی قلیل والذنوب کثیر، کاش کہ اس سے جب میں ملوں گا تو مجھے نہیں معلوم کہ میرا کیا حال ہوگا، کاش کہ دنیا میں مجھے معلوم ہو جاتا میرا حال، کیونکہ میرے پاس توشہ بہت کم، گناہ بہت زیادہ۔ فَإِنَّكُمْ مُجْزِيًا بِذَنْبِي فَإِنَّنِي بِشَرِّ عِقَابِ الْمُذْنِبِينَ جَدِيرُ، میرے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا تو مجھے تو یقین ہے کہ گناہوں کی سزا کے میں لائق ہوں۔ فَإِن يَكُ عَفْوٌ ثَمَّ عَنِّي وَرَحْمَةٌ فَثَمَّ نَعِيمٌ دَائِمٌ وَسُرُورٌ، اگر مالک کی طرف سے عفو کا معاملہ ہوگا، مہربانی کا معاملہ ہوگا، معافی کا، بخشش کا معاملہ ہوگا، تو وہاں نعمت اور ہمیشہ کا سرور اور دائمی چین اور سکون مجھے مل سکتا ہے۔ جیسا کل عرض کیا تھا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نعتیہ قصائد سنتے تھے، کبھی مجھ سے فرماتے کہ موت کا قصیدہ سنا دے، تو وہاں مدینہ طیبہ میں شروع میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا مسجد نور میں قیام رہتا تھا، پھر مسجد نور میں صرف شب کا قیام اور سارا دن مدرسہ علوم شرعیہ میں گزرتا تھا، پھر ایک انتہائی سنگین واقعے کی بنا پر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ مستقل طور پر مسجد نور سے مدرسہ علوم شرعیہ منتقل ہو گئے تھے۔ تو عمرے کے سفر میں حضرت مولانا سعید خان صاحب، اور اگر پاکستان سے اور ہندوستان سے حضرات تشریف لائے ہوئے ہوتے تھے نظام الدین سے، تو یہ حضرات بھی رمضان مبارک کے عمروں میں ساتھ ساتھ ہوتے تھے، اور شروع میں تو اتنی کاریں وہاں بھی نہیں ہوتی تھی، اگرچہ بعد میں تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہماری ہمشیرگان کے ساتھ سفر ہو رہا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ یہاں ہر ایک دو منٹ کے بعد جو پوش گاڑیاں روڈ پر ہر جگہ نظر آتی ہیں، ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں تو خال خال کبھی کبھار دیکھنے کو ملتی ہیں۔ तो उससे बहुत पहले का ज़माना कि एक ही ऊनेट कहते थे उसे, जो दूध वाला अपने वैन के ऊपर, ट्रक के ऊपर कपड़ा डाल करके उसको छप्पर बना करके दूध बेचता है, तकसीम करता है। तो उस तरह की मलिक साहब की वैन थी जिसमें ड्राइवर के साथ आगे हज़रत शेख नवर अल्लाह मरकदहु होते, तो पीछे काजी अब्दुल कादिर साहब हैं, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं, उनके साथी हैं, रफ़क़ा हैं, और हज़रत मौलाना सईद ख़ान साहब हैं। लंबा सफ़र है कई घंटों का, 6-7 घंटे उसमें लगते होंगे। तो हज़रत मौलाना सईद ख़ान साहब ने फरमाइश की कि मौली यूसुफ़ कुछ सुना दो। तो मैंने कहा कव्वाल को सुनाने वाले को तबला सारंगी वगैरह तो नाजायज़, मगर कम से कम दफ या उसके मुशावे तो कुछ हो। तो उन्होंने जो पकाने के बर्तन और खांचे वगैरह थे तो वो बजाने शुरू फरमा दिए, ताकि मदीना मुनव्वरा की तरफ रवां दवां हैं तो एक आशिकाना अंदाज में मदनी सफ़र हो जाए। तो हज़रत मज़ूब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमें कितना झंझोड़ा। फरमाते हैं एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, तू बराए बंदगी है याद रख, बहरे सरफ गंदगी है याद रख, वरना फिर शर्मिंदगी है याद रख, चंद रोज़ा जिंदगी है याद रख, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, तूने मनसब भी कोई पाया तो क्या, गंजो सीमो जर भी हाथ आ गया तो क्या, कसरे आली शाह भी बनवाया तो क्या, दबदबा भी अपना दिखाया तो क्या, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, कैसर और सिकंदर और जन्म चल बसे, जालो सोहराब और रुस्तम चल बसे, कैसे कैसे शेर उदय गम चल बसे, सब दिखा कर अपना दमखम चल बसे, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, जोर ये तेरा न बल काम आएगा, जोर ये तेरा न बल काम आएगा, और न ये तूले अमल काम आएगा, कुछ न हंगामे अजल काम आएगा, हाँ मगर अच्छा अमल काम आएगा, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, पील तन क्या क्या पछाड़े मौत ने, सर वक़्त कब्रों में गाड़े मौत ने, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, कुछ हाँ ए बेखबर होने को है, ताब के गफलत सहर होने को है, बांध ले तो शाह सफ़र होने को है, ख़त्म हर फर्द बशर होने को है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है गाफिल संभल, आ न जाए दीन व ईमान में खलल, बाज आ हाँ बाज आ ए बदअमल, बाज आ हाँ बाज आ ए बदअमल, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, दफ़ातन सर पर जो आ पहुँची अजल, फिर कहाँ तू और कहाँ दारुल अमल, जाएगा ये बेबहा मौका निकल, फिर न हाथ आएगी उम्र बेबदल, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, तुझको गाफिल फिक्र उकबा कुछ नहीं, खा न धोखा आयश दुनिया कुछ नहीं, जिंदगी चंद रोज़ा कुछ नहीं, कुछ नहीं इसका भरोसा कुछ नहीं, ये एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, मुंह खुदा को है दिखाना एक दिन, अब न गफलत में गवां एक दिन। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, सब के सब हैं रह रवे कुए फना, जा रहा है हर कोई सुए फना, बह रही है हर तरफ जुए फना, आती है हर चीज़ से बुए फना। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, चंद रोज़ा है ये दुनिया की बहार, दिल लगा इससे न गाफिल ज़ीनहार, उम्र अपनी यूं न गफलत में गुजार, होशियार ए महवे गफलत होशियार। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है ये लुत्फ आयश दुनिया चंद रोज़, है ये दौरे जामो मीना चंद रोज़, दारे फानी में है रहना चंद रोज़, अब तू कर ले कारे उकबा चंद रोज़। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, इशरते दुनिया ये फानी हेच है, पेशे ऐशे जावेदानी हेच है, मिटने वाली शादमानी हेच है, चंद रोज़ा जिंदगानी हेच है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम, सांस है एक रह रवे मुल्के आदम, दफातन एक रोज़ ये जाएगा थम। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, आखिरत की फिक्र करनी है ज़रूर, जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर, जिंदगी एक दिन गुजरनी है ज़रूर, कब्र में मैत उतरनी है ज़रूर। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, आने वाली किससे टाली जाएगी। हज़रत शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का स्टीमर में मुंबई से सफ़र हो रहा था, हरमेन का सफ़र है, सफ़र तय हुआ उसके बाद से ये अशार ज़ुबान पर, आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, फूल क्या डालोगे तुम तुर्बत पर, मेरी खाक भी न तुमसे डाली जाएगी। तो खाक भी न तुमसे डाली जाएगी का मतलब तब पता चला जब चंद रोज़ के बाद इत्तला आई कि हज़रत का समंदर के बीच विसाल हो गया और आपकी नाश मुबारक को समंदर के पानी के हवाले करना पड़ा। फूल क्या डालोगे तुम तुर्बत पर, मेरी खाक भी न तुमसे डाली जाएगी, आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है।